9 ربیع الاول کا دن آئے، اور اب جو امام 2 مہینے اور 8 دن، بلکہ اگر حج کی تاریخوں سے کیلکولیٹ کریں تو 3 مہینے، 3 مہینے جس گھر میں رہے تو روز آنا نماز فجر حرم میں پڑھ کے امام وہاں آتے ہیں، گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا، جتنے آنے والے آنا چاہیں آ کے امام کے بعد بیٹھے، پھر باقاعدہ ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا اور لوگوں کو ناشتہ دیا جاتا، اور چونکہ میزبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے بلکہ آغاز وہی کرے، تو خود امام بھی تشریف فرما. 9 ربیع الاول 67 ہجرہ کہ اچانک ایک آدمی بھرے ہوئے مہمانوں کے اس کمرے میں داخل ہوا، دسترخوان بچھا ہوا، ناشتہ شروع ہو چکا، اس کے ایک ہاتھ میں خط ہے، دوسرے ہاتھ میں تھیلی، آگے بڑھ کے چوتھے امام کے قریب گئے، فرزند رسول میں مختار کا قاصد، یہ خط بھی مختار نے بھیجوایا، یہ تھیلی بھی مختار نے بھیجوائی. خط کھول کے پڑھا گیا، لکھا تھا کہ اما بعد، اے میرے آقا اور مولا، جتنا میرے بس میں تھا میں نے آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا، اور یہ 5 کٹے ہوئے سر آپ کی خدمت میں بھیجوا رہا ہوں. وہ تھیلی کھولی، ابن زیاد کا سر، عمر سعد کا سر، شمر کا سر، ابن نمیر کا سر، خولی یا حرملہ کا سر. یہ دیکھتے ہی امام شکر کے سجدے میں گرے، مگر اس کثرت سے امام شکر کے سجدے کرتے تھے کہ لقب سجاد، مگر اس دفعہ شکر کے سجدے میں ایک عجیب جملہ کا، شکرن للہ، شکر اس خدا کا جس نے میری دعا کو اس انداز سے پورا کیا. جب امام اٹھے سجدے، سارے مجمع نے کہا مولا یہ کون سی دعا کا حوالہ دیا، کہا جب میرے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا، وہ ملون ناشتے میں لگا تھا. ارے حقارت و ذلت کے انداز میں اس نے کہا، رکھ دو ان سروں کو ایک طرف، پہلے مجھے ناشتہ کرنے دو. اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی تھی، پروردگار اس ظالم کا کٹا ہوا سر بھی میرے پاس اس وقت آئے کہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوں، اور اس انداز سے خدا نے میری دعا قبول کی. امام اٹھے، کہا تم لوگ یہ سر بھی دیکھو ناشتہ بھی کرو. یہ کہہ کے امام اٹھے، اہل حرم کے پاس گئے، کربلا سے لے کے آج تک سیدانیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، نئے کپڑے کا حکم دیا، بالوں میں تیل نہیں ڈالا، تیل کا حکم دیا، کنگھی نہیں کی، کنگھی کا حکم دیا، چولہا روشن نہیں ہوا تھا، حکم دیا کہ آج اچھے اچھے اور لذیذ کھانے پکائے جائیں، جیسے عید ہے اس طرح سے اس کو مناؤ. 9 ربیع الاول باہر آئے، اب باہر آ کے امام وہ سر دیکھتے جا رہے ہیں، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کہتے جا رہے ہیں. اب وہاں پہ اصل یہ جملہ تھا، کل رات کو یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، اس لیے میں 10 منٹ کی تکرار کی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. اب یہ جملہ، امام کے پاس روز آنا امام کے پاس ناشتے کے اختتام پہ ایک سویٹ ڈش یا ایک ڈیزرٹ لا کے رکھی جاتی تھی امام کی طرف، اور وہ اتنی ٹیسٹی اور مزیدار ہوتی تھی. کس طرح وہ بنائی جاتی ہے اس کا نسخہ یا ریسیپی کسی کو نہیں پتا، عورتیں ہوتی تو پوچھ لیتی نا کہ بھائی وہ اس کی ریسیپی کیا، ذرا جلدی سے زبیدہ آپا بتا دیجیے ہم کو لکھنا ہے. یہ پتا نہیں کون سی آپا ہے، مجھے تو لوگوں نے بتایا، ہوں گی کوئی آپا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہاں کیونکہ عورتوں کا انوالومنٹ نہیں ہے مردوں، وہ اتنی لذیذ کہ بہت سارے لوگ جو امام کو امام بھی نہیں مانتے منافق ہے، خالی وہ سویٹ ڈش کھانے کے لیے آتے، خالی اس کے لیے. جو ہمارے یہاں تبرک کا بھی ایک کنسپٹ ہے کہ اس بہانے لوگوں کو لا کے بٹھاؤ، پیغام امام پہنچاؤ، ہے ایک تصور، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو خیر ان کو باقی معاملات سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اب آتی ہے وہ ڈیزرٹ، اب آتی ہے وہ سویٹ ڈش جس کے لیے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں. آدھا گھنٹہ گزر گیا، امام وہ کٹے میں سر دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے. کسی نے کہا کہ فرزند رسول بہت دیر ہو گئی ہے، ناشتہ ختم ہوئے، گیپ سا آ گیا، وہ سویٹ اب تک نہیں آئی. یہ جملہ امام کا میں بتا رہا. امام نے کہا کہ ان ملعونوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے سے مومن کے دل میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی مٹھاس کی ضرورت ہے؟ اور مولا کی خوشی کا اندازہ کریں، فرماتے خالی ان ملعونوں کے ملائین سے کٹا بسر ये मोमिन देखेगा इतना उसका दिल इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि इसके बाद फिर किसी डेजर्ट की, फिर किसी स्वीट डिश की उसको जरूरत नहीं। इतनी खुशी होनी चाहिए नौ रबीउल अव्वल को, और ऐसा मजा कि इसके आगे हर डेजर्ट, हर स्वीट डिश, तमाम हलवे, तमाम मिठाइयां बिल्कुल बेकार। ये मजा तो मैं भी ले सकता हूं। क्या मतलब? मैं डायबिटिक पेशेंट, बहुत ही सीनियर किस्म का, सीनियर डायबिटिक पेशेंट हूं, 35 साल हो गए मेरी डायबिटिक को। बाकी तो किसी चीज का मजा नहीं ले सकता, खाली गुलाब जामुन दूर से देखता हूं और हसरत के आंसू बहाता हूं, लेकिन ये वाला मजा हो। मगर चौथे इमाम ने जिस मजे की बात मुख्तार के कारनामे में की, ये भी अभी आधा मजा। असली मजा तो उस वक्त आएगा मोमिन को जब हुसैन का वली वारिस जाहिर होकर हुसैन के खून का इंतकाम। दो बातें याद रखिएगा, दो बातें। पहली बात, मुख्तार ने जो जिहाद किया यह मासूम की तरफ से नहीं है, यह एक मोमिन की इंफिरादी जिम्मेदारी, हर मोमिन की इंफिरादी जिम्मेदारी। तुम सोचो कि आले मोहम्मद के जालिमों से क्या इंतकाम ले सकते हो। सूरह बनी इसराइल में खुदा ने कहा मन कुतिला मजलूम मन फकत जालना ले वली यही सुल्ताना, जो मजलूम मारा गया उसके वली को हमने हक का इंतकाम दिया। तो वली तो अभी आया नहीं ना, जब वली आएगा तब असली इंतकाम तो तब लिया जाएगा। ये तो फकत एक मोमिन ने अपनी इंफिरादी जिम्मेदारी पूरी की है। यही वजह कि जियारत वारिसा में आज भी हम कहते हैं, मुख्तार के बाद भी हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, वरना अगर मुख्तार का इंतकाम क्लोज हो जाता है चैप्टर तो जुमला निकल जाना चाहिए जियारत से। इसका तर्जमा क्या? हमारा सलाम हो आप पर, आपके खून का बदला भी अल्लाह को लेना है। वो असली इंतकाम बाकी है जो इमाम जमाना लेंगे, क्योंकि वो हुसैन के वली और वारिस है। दूसरी बात, बहुत एहतियात से कह रहा हूं, दूसरी बात यजीद उमर साद इब्ने जियाद खूली हरमुला, क्या करबला के वाकये की ये लोग जिम्मेदार? ये तो सामने के कुछ चेहरे थे जो नजर आ रहे। करबला में तो है कोई माशूक इस पर्दा जंगारी में, कुछ पीछे छुपे हुए भी हाथ। और इसके लिए आप दो जुमले मेरे और सुन लीजिए, अल्लामा मजलिसी ने लिखा है लेकिन ये उनका कौल नहीं है, हमारे तमाम उलमा ने मुत्तफिका तौर पर कहा कोतेल हुसैन बिसकीफा लाब करबला, हुसैन असल में सकीफे में शहीद किए गए, करबला में तो खाली अमल मुकम्मल हुआ। और कई जियारतों में एक लफ्ज आया जिसमें जियारत आशूरा भी, कि इन सब पे लानत हो और उस पर भी लानत हो, अल मुमक्किनीन लहुम वल मुमहिदीन लहुम, उन पर भी लानत हो जिन्होंने मुआविया और यजीद को मुल्क शाम का इख्तदार देकर इतना ताकतवर बनाया कि वह अहले बैत के खिलाफ जंग करें, इन लोगों को ये इख्तियार देने वाले भी लानत हो, इनके लिए मैदान हमवार करने वालों पर भी लानत हो। मुआविया कहां से इतना ताकतवर हो गया था? किसी ने उसको 40 साल शाम के सूबे का गवर्नर बना के रखा है। कुछ और लोग बड़े वीआईपी किस्म, अब वीआईपी में कितने हैं लेटर हैं आप गिनते रहिएगा। तो मसला यह है कि उनसे तो इंतकाम बाकी है ना, वो इंतकाम मुख्तार ले ही नहीं सकते हैं। मुख्तार तो उनसे इंतकाम लेंगे जो उस वक्त जिंदा। यजीद भी मुख्तार से पहले वासिले जहन्नम हुआ था, मुख्तार यजीद को नहीं से इंतकाम नहीं ले पाए। हां एक इमाम बरहक पर्दा गैबत में, वो जब जाहिर होगा तो मरने वाले भी जिंदा किए जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं इमाम आएंगे तो भी सारे मसले हल होंगे और दीन पे अमल करेंगे, और इमाम इंतजार कर रहे हैं हमारे चाहने वाले अपने आप को चेंज करेंगे तब हम आएंगे और इनकी वजह से इस्लाम को लेकर। इमाम मुंतजिर है, इंतजार कर रहे हैं हमारे चाहने वाले अपने आप को बदलेंगे और फिर हमें बुलाएंगे तो फिर इनकी मदद से हम अपना जिहाद करेंगे, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब यहां पे बराबरी का रिश्ता तो है नहीं, जैसे दो भाइयों का बराबरी कर रहा, इमाम का इंतजार बढ़ा कर हम धोखा खाए बैठे हैं कि कुछ नहीं करना, वैसे ही जिंदगी गुजारते रहो और इमाम आके मसले हल करेंगे। नहीं, यही गलती कूफे वालों ने की थी। देखिए पूरा याम अजा का खुलासा कि इमाम को बुलाया तो मगर कोई तैयारी नहीं की, तो नतीजा क्या निकला? इब्ने जियाद जब आया था ना कूफे वाले समझे इमाम आ गए। इब्ने जियाद चेहरे पे नकाब डाल के आया था, अरब में डेजर्ट में ट्रेवलिंग में चेहरे पे नकाब डाला जाता, कूबे वाले समझ रहे थे कि हमने इतने खत्म किए आका हुसैन को, ये हुसैन आ गए। जाल हुसैन जाल हुसैन जाल सैयदना आवाज लग गई, सब लोग घरों से निकल आए। अल्लाह अल्लाह इमाम को बुला रहे हो और इतना भी नहीं पता कि इमामत को पहचानोगे कैसे, इब्ने ज़ियाद को इमाम समझ बैठे हो। यही गलती कहीं हमसे ना हो, क्योंकि हमारे लिए तो रिवायत भी है कि इमाम जमाना के साथ दज्जाल भी आएगा जो साहिबान ईमान को बहकाएगा। तो जश्न ईद उज ज़हरा, आखिरी आखिरी बात नहीं कह रहा हूं, तो पांच दफा कह चुका हूं, आखिरी जुमला, जश्न ईद उज ज़हरा हमें पैगाम देता है कि मुख्तार ने जो इंतकाम लिया वो बहुत छोटा इंतकाम था, असली इंतकाम बाकी है। ये इंतकाम जहरा का वारिस और फर्जंद जमाने का इमाम लेगा और इस इंतकाम के लिए वो हमारे और आपके तब्दील होने का इंतजार कर रहा है। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो इमाम आ जाएंगे। और अब मैं जुमले को बदल दूं, यानी अगर हम अपने आप को बदलते नहीं आए तो इमाम के आने में देर हो रही है। नहीं, बहुत छोटा जुमला बन गया, इमाम के आने में देर हो रही है, इसका मतलब क्या? अकबर के कातिल को सजा मिलने में देर हो रही है, हुसैन के कातिल को सजा मिलने में देर हो रही है, अब्बास के कातिल को सजा मिलने में देर हो रही है। आगे बढ़ता हूं, जहरा के बदन पे कोड़े मारने वाले को सजा मिलने में देर हो रही है, मोहसिन को शहीद करने वाले को सजा मिलने में देर हो रही है, फातिमा जहरा के घर का दरवाजा जलाने वाले को सजा मिलने में देर हो रही है। साहिबान ईमान, मोमिन हर गुनाह कर सकता है, शिमर की सजा को नहीं टलवा सकता है, मोमिन से यह गुनाह मुमकिन नहीं, मोमिन हर गुनाह कर सकता है, कातिल अली अकबर की सजा में ताखिर नहीं करवा सकता, मोमिन हर गुनाह कर सकता है, जहरा की पसलियां तोड़ने वाले की सजा में ताखिर नहीं कर सकता। तो जश्न ईद उज़ ज़हरा का पैगाम यह है, बदले अपने आप को, बदले अपने घरों को, बदले अपने बच्चों को, ताकि इमाम जल्दी आए, सही मानों में इंतकाम लिया जाए, फिर हम और आप मिलकर इमाम जमाना के साथ जश्न ईद ज़हरा मना। मजा तो उसी जश्न में है ना जो इमाम के साथ मनाया जाए। एक चीज मैंने यहां सुन ली कि संडे स्कूल बहुत अच्छा चलता और बच्चों को लोग भिजवा भी बड़े शौक से रहे, और इंतजाम करने वाले वाकई खुलूस से इंतजाम करें, खाली खाना पूरी नहीं है कि इदारे जाफरिया मेरीलैंड में भी एक संडे स्कूल है, यह भी इमाम जमाना के लिए आपकी तरफ से एक पैगाम है। बस जरा सा आगे बढ़कर बच्चों के साथ औरतों पर ही तवज्जो दीजिए, यानी उनकी तब्दीली पर, और उसके साथ अपने आप को बदलने में भी तवज्जो दीजिए, और फिर इमाम आ गए, और आ गए तो हम ऐसा जश्न मनाएंगे, ऐसा जश्न मनाएंगे कि जिब्राइल ने भी नहीं देखा होगा कि इतनी खुशी भी कोई मना सकता है, इमाम जमाना का आना और जालिमों से इंतकाम लेना। लेकिन हम बहुत कमजोर इस दुनिया में है, इमाम ही से मदद मांग रहे हैं, अय मेरे जमाने के इमाम, अय हुज्जत खुदा, अय वारिस मुश्किल कुशा अली, साहिबान ईमान को वो हौसला और ताकत अता कीजिए जिससे वो इस कुफ्रिस्तान के 21वीं सदी के माहौल में उस मिशन को पूरा कर सके जो आपका मिशन है। परवरदिगारा तुझे वास्ता इस जश्न ईद ज़हरा का, जिस तरह तू फातिमा ज़हरा के दिल की ठंडक का इंतजाम किया, आले मोहम्मद का इंतकाम थोड़ा सा सही आज लिया गया, इन साहिबान ईमान को इनके आंसुओं के तुफे दुनिया और आखिरत की हर मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमा, इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा, गमे हुसैन के सिवा हमें कोई गम अता ना फरमा, मगर गमे हुसैन मरते दम तक, कब्र में भी, कयामत में भी, जन्नत में भी हमें आजादार है हुसैन और मातमी बना के दाखिल फरमा। परवरदिगारा हमारे तमाम मरहूमीन की भी मगफिरत फरमा, और जब इमाम जमाना जाहिर हो तो हमें इमाम की फौज का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। और खुदा बंदा जब जाहिर हो का क्या मतलब, अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन के जहूर में ताजील फरमा। ये खुशी आपको हजरत मुबारक हो, और इसके एतबार से अब आपको जो पैगाम मैंने देना था दे दिया है, लेकिन एक तोहफा हम आले मोहम्मद की खिदमत में ईद का क्या तोहफा पेश कर, क्या चीज है जो हम उनको देंगे, वही तो हमें सब कुछ अदा करने वाले हैं। हाँ, एक तोहफा ऐसा जो अल्लाह भी उनको देता है तो हम और आप भी उसको देंगे, बाबा दे बलंद दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले।